नमस्कार। हिंदू धर्म में हम इतने सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके अलग अलग रूप है ना, मूर्तियां, चित्र, उनके वाहन
जी, और बिल्कुल अनगिनत प्रतीक है।
हाँ, तो हम श्रद्धा से पूजा तो करते हैं, पर कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इन प्रतीकों का मतलब, इनके पीछे का असली अर्थ क्या है? क्या ये सिर्फ बाहरी रूप है?
बहुत अच्छा सवाल है।
या इनमें कोई गहरा संदेश भी छिपा है?
बिल्कुल छिपा है, और आज हम कोशिश करेंगे कि इसी गूढ़ विषय को थोड़ा समझें। हमारे पास पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक बहुत ही विचारणीय उद्बोधन है।
अच्छा
जी, ये अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और इसका शीर्षक है प्रतीक पूजा के पीछे छिपे संकेत और शिक्षाएं।
वाह, प्रतीक पूजा के पीछे छिपे संकेत और शिक्षाएं।
हाँ, तो आज का हमारा उद्देश्य यही है कि प्रतीक पूजा का जो असली मर्म है, जो तत्व है, उसे थोड़ा समझने की कोशिश करें।
ये तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पूज्य गुरुदेव क्या सिखाना चाहते हैं हमें इन प्रतीकों से? एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि भाई, लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं, घंटों लगे रहते हैं, पर जीवन में वैसा बदलाव नहीं दिखता जिसकी उम्मीद होती है।
हाँ, ये दुविधा बहुत लोगों को होती है।
और दूसरी तरफ कई लोग जो शायद इतनी पूजा नहीं करते, वो उन्नति करते दिखते हैं। ऐसा क्यों? इस पर पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं?
पूज्य गुरुदेव इस पर बहुत ही मौलिक बात कहते हैं। वो कहते हैं समस्या पूजा में नहीं है।
अच्छा, तो फिर किस में है?
समस्या हमारी पात्रता में है, मतलब हमारे पात्र में, हमारे अंदर।
पात्रता, इसको थोड़ा समझाइए।
हाँ, देखिए, जैसे बारिश तो सबके लिए समान रूप से बरसती है।
जी हाँ।
पर पानी किस बर्तन में इकट्ठा होगा? उसी में जो सीधा रखा हो और जिसमें पानी को धारण करने की क्षमता हो, जगह हो।
सही बात है, उल्टे बर्तन में तो पानी नहीं रुकेगा।
बिल्कुल। तो पूजा का असली उद्देश्य भगवान की खुशामद करना नहीं है, बल्कि अपनी पात्रता को विकसित करना है।
मतलब खुद को तैयार करना।
हाँ, खुद को तैयार करना, अपने मन की जो मलिनताएं हैं, जो दोष दुर्गुण हैं, उन्हें साफ करके स्वयं को ईश्वर की कृपा ग्रहण करने के योग्य बनाना। तो मुख्य शिक्षा नंबर एक यही है। पूजा की सफलता बाहरी क्रिया पर नहीं, बल्कि कृपा ग्रहण करने की आंतरिक योग्यता यानी पात्रता विकसित करने पर निर्भर करती है।
जैसे साफ कपड़े पर ही रंग चढ़ता है।
बिल्कुल सही कहा आपने, मैले कपड़े पर रंग कहाँ चढ़ेगा। वैसे ही अशुद्ध मन ईश्वर के दिव्य गुणों को कैसे धारण करेगा? भस्मासुर का उदाहरण याद है?
हाँ हाँ, बिल्कुल। शिव जी से वरदान पाया था।
हाँ, तप करके वरदान तो पा लिया, पर मन मलिन था, पात्रता नहीं थी, तो क्या हुआ, अपने ही वरदान से स्वयं ही भस्म हो गया। पात्रता के बिना भक्ति भी एक तरह से अधूरी रह जाती है।
ये पात्रता वाली बात तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। तो फिर ये जो प्रतीक है, इनका क्या रोल है इसमें? जैसे हम देखते हैं गायत्री माता हंस पर विराजमान है, या गणेश जी का वाहन मूषक है, चूहा, इनका क्या मतलब है फिर?
पूज्य गुरुदेव यहाँ स्पष्ट करते हैं कि ये प्रतीक शाब्दिक अर्थ में लेने के लिए नहीं है, ये सांकेतिक है, मतलब इशारे हैं।
सांकेतिक?
जैसे?
जैसे
हंस। हंस किसका प्रतीक है? नीर शीर विवेक का, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने की क्षमता, सही गलत, अच्छे बुरे की पहचान करने की बुद्धि।
अच्छा, तो गायत्री माता हंस पर बैठती नहीं है?
नहीं, इसका अर्थ ये है कि माँ गायत्री की कृपा यानी सद्बुद्धि उस व्यक्ति पर होती है जिसमें विवेक जागृत हो। जो विवेकशील है वो माँ की कृपा का पात्र है। इसे ऐसे समझें जैसे हम बच्चे को क अक्षर सिखाने के लिए कबूतर का चित्र दिखाते हैं।
हाँ, क से कबूतर।
जी, पर लक्ष्य क्या होता है? क अक्षर सीखना है ना, न कि कबूतर की पूजा करते रहना।
हाँ, ये तो है।
तो प्रतीक महत्वपूर्ण है, पर वो साधन है, साध्य नहीं। मुख्य शिक्षा दो ये है, प्रतीक मंजिल नहीं, सिर्फ दिशा दिखाने वाले संकेत हैं। असली महत्व उनके पीछे छिपी शिक्षा को जीवन में उतारने का है।
मतलब प्रतीकों के संदेश को समझकर उसे अपने जीवन में, अपने आचरण में लाना जरूरी है।
बिल्कुल।
आपने शंकर जी का भी जिक्र किया था, उनकी पूजा तो बहुत होती है, उनके स्वरूप से हमें क्या खास सीख मिल सकती है? जैसे उनकी तीसरी आंख, उसका क्या रहस्य है?
हाँ, भगवान शंकर, उनकी तीसरी आंख वो विवेक और दूरदृष्टि का प्रतीक है।
विवेक और दूरदृष्टि।
जी, देखिए, हमारी ये जो दो सांसारिक आंखें हैं, ये क्या देखती हैं? बस आसपास का, तात्कालिक सुख दुख, लाभ हानि, बस यहीं तक सीमित हैं।
हाँ, ये तो है।
पर जो तीसरी आंख है, वो हमें इस क्षणिक मोह से, इस तात्कालिक नफे नुकसान से परे जाकर दूरगामी परिणामों को देखने की दृष्टि, एक समझ देती है।
अच्छा, जैसे?
कोई उदाहरण, जैसे किसान आज बीज बो रहा है, पर उसकी नजर कहाँ है? भविष्य की फसल पर।
हाँ।
यह विद्यार्थी ताज मेहनत कर रहा है, पर वो क्या देख रहा है? अपना आने वाला कल, अपना भविष्य। ये दूरदृष्टि है। रामायण में जटायु का उदाहरण देखिए।
जटायु, हाँ।
वो जानते थे कि वो शक्तिशाली रावण से जीत नहीं सकते, फिर भी धर्म की रक्षा के लिए, एक नारी के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये उनकी दूरदृष्टि थी, उनका विवेक था। शबरी को देखिए।
शबरी, हाँ, राम जी की भक्त।
सालों तक बिना किसी अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से ऋषियों के आश्रम के मार्ग की सेवा करती रही। कंकड़ पत्थर हटाना, झाड़ू लगाना, ये उनकी विवेक दृष्टि थी, सेवा भाव था।
ये तो बहुत अद्भुत व्याख्या है तीसरी आंख की। अच्छा, और वो जो शंकर जी भस्म लगाते हैं पूरे शरीर पर, शमशान में रहते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं, ये तो सुनने में बड़े डरावने से लगते हैं, इनका क्या अर्थ है?
हाँ, ये प्रतीक थोड़े गंभीर जरूर लगते हैं, पर गहरे अर्थ लिए हुए हैं। ये जीवन की परम सच्चाई का आईना दिखाते हैं, भस्म और शमशानवास।
हाँ,
ये हमें याद दिलाते हैं कि ये जीवन क्षण भंगुर है, मृत्यु एक अटल सत्य है। हम अक्सर इसे भूल जाते हैं ना?
हाँ, भूल जाते हैं।
तो ये प्रतीक हमें जगाते हैं कि सिर्फ दुनिया की चीजों में, इस शरीर के मोह में ही मत उलझे रहो। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिकंदर का किस्सा तो सुना ही होगा।
हाँ, विश्व विजेता सिकंदर खाली हाथ गया।
बिल्कुल, सब कुछ जीतकर भी अंत में खाली हाथ। राजा परीक्षित को जब पता चला कि 7 दिन में मृत्यु निश्चित है, तो उन्होंने क्या किया?
श्रीमद् भागवत सुनी।
हाँ, अपने बचे हुए समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया आत्मकल्याण के लिए। और वो मुंडों की माला?
हाँ, वो किस लिए?
वो याद दिलाती है कि ये शरीर, जिसके रंग रूप पर, जिसकी सुंदरता पर हम इतना इतराते हैं, वो आखिर में क्या है? हड्डियों का ढांचा ही तो है। तो हमें बाहरी रूप रंग से ज्यादा आंतरिक गुणों पर ध्यान देना चाहिए। तो मुख्य शिक्षा #3 क्या हुई? जीवन की नश्वरता को स्वीकारें और बाहरी रूप से ज्यादा आंतरिक गुणों, विवेक, दूरदृष्टि, पवित्रता को महत्व दें, जैसा शिव के प्रतीक सिखाते हैं।
ये तो बहुत गहरी बातें हैं। मतलब प्रतीकों को सिर्फ देखना नहीं, उनके अर्थ को जीना है। तो क्या बस इतना समझना, विचार करना ही काफी है?
नहीं, समझना पहला कदम है, पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सच्ची उपासना में समझने और अपनाने के साथ साथ सेवा भी अनिवार्य रूप से जुड़ी है।
सेवा?
जी हाँ, सेवा। मुख्य शिक्षा #4 यही है। भक्ति केवल पूजा पाठ या ध्यान तक सीमित नहीं है। निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए कर्म करना, यानी सेवा, सच्ची उपासना का अभिन्न अंग है।
जैसे शबरी ने की?
बिल्कुल, शबरी की सेवा। या जैसे रामसेतु बनाते समय वो छोटी सी गिलहरी, उसका वो छोटा सा योगदान।
हाँ हाँ, रेत के कण ला रही थी। निस्वार्थ भाव से निभाना भी एक तरह की पूजा ही है, भक्ति ही है।
तो अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो प्रतीक पूजा तभी सार्थक है जब हम उसके पीछे छिपे संकेतों को, मतलब विवेक, दूरदृष्टि, पवित्रता, सेवा का भाव और जीवन की क्षण भंगुरता का बोध, इनको समझें और अपने जीवन में उतारें।
हाँ,
सिर्फ बाहरी कर्मकांड या रस्में निभाना पर्याप्त नहीं है।
आपने बिल्कुल सही सार निकाला। जैसा पूज्य गुरुदेव ने सिखाया है, असली सवाल हमें खुद से पूछना है कि क्या हमारी पूजा हमें सिर्फ बाहरी क्रियाओं में उलझाए रख रही है, या फिर वो हमें अंदर से बदल रही है, हमें एक बेहतर, एक अधिक विवेकशील, ज्यादा सेवाभावी इंसान बनने की प्रेरणा दे रही है। हमें ये सोचना होगा कि हम इन प्रतीकों से केवल आशीर्वाद और वरदान ही मांग रहे हैं,
या
उनसे मिलने वाली शिक्षाओं को आत्मसात करके अपने जीवन को सचमुच शिव यानी कल्याणमय बना रहे हैं। सचमुच ये सोचने वाली बात है कि हमारी भक्ति, हमारी पूजा हमें असल में किस दिशा में ले जा रही है। बहुत धन्यवाद इस गहरी चर्चा के लिए।
जी, धन्यवाद।